ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच। एकदा गृहदासिषु यशोदानन्द गेहिनी कर्मान्तर्नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधे। इस अध्याय के पूर्व महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न किया है सुखदेव गोस्वामी से। नंद किम करोत ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम सोदानंद पत्नी व पपुह जस्यास्तनम हरि। हे श्रील सुखदेव गोस्वामी, हे सर्वज्ञ मुने, नंद महाराज ने ऐसा कौन सा सुकृत किया था, कौन पुण्य किया था कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वे आनंद ले लिए, और यशोदा ने कौन सुकृत किया था जिसका स्तन पान श्री कृष्ण किए, जिसका दूध पिए। यह सुख है देवकी नहीं पा सकी। बेचारी देवकी कृष्ण को कारागृह में जन्म दी तो ऐसी विवश अवस्था थी कि कृष्ण को अपने से दूर करना पड़ा, मथुरा से ब्रज में गोकुल में भेजना पड़ा। तो महाराज परीक्षित एक बहुत ही अफसोस करते हुए कहते हैं कि पितरौ नान बिन देता। कृष्ण के साक्षात माता पिता उस सुख को नहीं पा सके जो नंद और यशोदा पाए। यद्यपि नंद और यशोदा भी पिता माता हैं भगवान के, परंतु लोक दृष्टि से यह बात छिपी हुई है। अतः महाराज परीक्षित भी प्रच्छन्न तरीके से ही प्रश्न कर रहे हैं। कृष्ण के माता पिता बाल लीला के सुख को नहीं पा सके जिस सुख को यशोदा और नंद महाराज पाए। तो क्या प्रश्न होगा कि यशोदा और नंद कृष्ण के माता पिता नहीं है? वास्तविकता यह है कि भगवान यशोदा जी के भी गर्भ से जन्म लिए। और गत वर्ष में इस बात को कहा था, अतः इस वर्ष उसको नहीं ले पाऊंगा। पर समझ लेना चाहिए कि कई बातें ऐसी होती हैं कि जो जानते हुए महापुरुष लोग लोक विधि से ही चर्चा करते हैं उसकी। तो महाराज परीक्षित के कहने का आशय है कि देवकी और वसुदेव कृष्ण की बाल लीला का सुख नहीं पा सके और वह सुख नंद यशोदा पाए। तो नंद महाराज ने और यशोदा ने कौन सुकृत किया था? उस प्रश्न का उत्तर दिया सुखदेव गोस्वामी ने, परंतु महाराज परीक्षित बहुत संतुष्ट नहीं हुए उस उत्तर से। तब सुखदेव गोस्वामी को भगवान की वह लीला याद आ गई जब वे दही का मटका फोड़े थे और माँ यशोदा ने उन्हें बांधा था। तो उस संदर्भ में तात्विक सिद्धांत का वर्णन करने के लिए यह लीला कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भक्ति के वश में हैं और नंद यशोदा ने भक्ति किया, प्रेम किया। यह बात वे कह चुके हैं आठवें अध्याय के अंत में, परंतु महाराज परीक्षित संतुष्ट नहीं हुए थे। तब सुखदेव गोस्वामी को दाम बंधन लीला की याद आ गई और इसके द्वारा महाराज परीक्षित पूर्ण संतुष्ट हो गए कि भगवान किस प्रकार अपने भक्त के वश में हैं और भक्त के वश में होकर असमूर्ध अनंत अनंत सुख राशि वे भक्त को देते हैं, यह दिखाया गया है इस अध्याय में। एकदा से प्रारंभ कर रहे हैं। दा का अर्थ होता है समय, जैसे सर्वदा, कदा, जदा, ऐसे एकदा शब्द है, एकदा, एक समय, एकस्मिन दिने, एक दिन नंद गेहिनी यशोदा दासियों को भिन्न कार्यों में लगा दी। यशोदा जी के घर में सहस्रों दासियां थी दही मथने के लिए, और अन्य भी कार्य थे, परंतु यशोदा गृह दासिसु अपने घर की दासियों को कर्मांतर नियुक्तासु कर्मांतर में लगा दिया, भिन्न कर्म में लगा दिए। दासियों पर अधिकार है ही, क्योंकि नंद गेहिनी है, राजा की पत्नी है। कौन सा ऐसा काम आ गया था जिसमें उन्होंने दासियों को लगा दिया? एक नैमित्तिक काम आ गया था। नैमित्तिक कार्य का अर्थ है दैनिक नहीं, नित्य नहीं, कोई पर्व आ गया था बीच में निमित्त, वो था इंद्र याग, इंद्र की पूजा, क्योंकि गोप लोग प्रत्येक वर्ष इंद्र की आराधना करते थे, जो बाद में गोवर्धन पूजा होने लगी। तो इंद्र याग की तैयारी चल रही थी, और दीप मालिका के ठीक दूसरे दिन ही, दीपावली के दूसरे दिन ही पूजा करनी थी, और पूजा कई दिन होती थी, जितना दिन भगवान गोवर्धन धारण किए थे उतने दिन तक पूजा चलती थी पहले। तो इंद्र की पूजा विफल हो गई, तो उन्होंने ब्रज का नाश करना चाहा, तो भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। तो उस पूजा की तैयारी चल रही थी, अतः बहुत बहुत सामान इकट्ठा करना था, बहुत मिठाइयां बनानी थी, खीर बनाना था, पूरी और क्या क्या बहुत पकवान बनाने थे, अतः वह सब सामान प्रस्तुत करने में घर की दासियों को लगा दिया। लग जाओ कर्मांतर नियुक्ता, और निर्ममन था स्वयं दधि। यह प्रश्न उठता है कि माँ यशोदा स्वयं क्यों दही मथने लगी? निर्ममन था स्वयं दधि निर्ममन था। स्वयं शब्द बता रहा है कि यशोदा कभी भी दधि मंथन नहीं की थी, स्वयं शब्द अपने आप इस बात को बता रहा है। स्वयं दधि निर्ममन, पहले वे अपने दासियों से मथवाती थी, कृष्ण के लिए भी और सब घर में जो कुछ जरूरत थी, लेकिन आज वे स्वयं दधि मथने लगी। इस पर आचार्यों ने टीकाएं की हैं, और वे कहते हैं कृष्ण के विषय में अपवाद निरंतर आने लगा ब्रजवासियों के घर से। क्या अपवाद आता था? कृष्ण हमारे घर का माखन खा गया, कृष्ण हमारे दूध पी गया, हमारा दही खा गया। एक छोटा सा बच्चा और 84 कोस ब्रजमंडल के सब दही और दूध को पी जाता था, एक आश्चर्य की बात है। और वास्तव में कोई ऐसा ब्रजवासी नहीं था, ऐसी कोई गोपी नहीं थी जिसका नवनीत दही और घी कृष्ण न खाए। तो शिकायत पर शिकायत आने लगी, और वास्तविकता यह थी कि श्री गोपी जन स्वयं ही चाहते थे कि कृष्ण हमारे घर में आवे, माखन खाएं, हम उनको पकड़ें तो वे झूठ बोले, उनके साथ बातचीत करने का एक अवसर मिले, उनकी बाल चपलता, मुस्कान, झूठ बोलने की चतुराई, ये सब उस देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे। और माँ यशोदा के पास भी वे आती थी तो कृष्ण को देखने के लिए और कृष्ण के वाक्य को सुनने के लिए कि ये क्या बोलते। परंतु माँ माँ है, उसके हृदय में अपने पुत्र के स्नेह के कारण बहुत चिंता हो गई। माँ यशोदा ये नहीं समझ रही थी कि कृष्ण प्रेममय लीला कर रहा है और सभी पसंद कर रहे हैं, यह भगवान है, अतिशय वात्सल्य के प्रगाढ़ भाव के कारण माँ यशोदा श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को तो कभी नहीं जान पाई। पर इसकी चिंता बढ़ रही थी कि मेरा पुत्र अपने घर के भोजन से संतुष्ट नहीं है, दूसरे के घर जा जाकर के खाता है, तो इसका अर्थ है कि दूसरे का माखन या दही स्वादिष्ट है मेरे घर की अपेक्षा। तो बहुत पहले से ही वो प्रयास करती थी, दासियों कहती थी कि ऐसे दही जमाओ, ऐसे मथो, ये करो वो करो, स्वादिष्ट माखन निकालो, स्वादिष्ट दही जमाओ, रो खिलाओगे कृष्ण को। लेकिन कृष्ण की चोरी जब नहीं रुकी तब माँ यशोदा की शंका दृढ़ हो गई कि लगता है कि हमारे घर का माखन स्वादिष्ट नहीं है या दही ठीक नहीं है। तब वह स्वयं मथने लगी, स्वयं दही जमाई थी पद्मगंधा गाय के दूध का, और ठीक टाइम पर उसमें खट्टापन नहीं आना चाहिए थोड़ा भी, और ठीक तरीके से नहा करके सवेरे और रेशमी लहंगा पहन करके ओढ़नी ओढ़ करके बहुत पवित्र ढंग से और बहुत तन्मयता के साथ दही मथने लगी। निर्ममंथ स्वयं दधि, क्या उद्देश्य है दही मथने का? अपने पुत्र को अति स्वादु नवनीत खिलाना जिससे वह दूसरे के घर में जाना छोड़ दे। जब घर में सबसे अधिक आनंद आएगा भोजन में तो आदमी क्यों दूसरे के घर में जाएगा? बताइए, बच्चा है उसको अच्छा नहीं लग रहा था घर में, तब तो दूसरे के घर में जा रहा था, और वो भी राजा का पुत्र। नंद महाराज गोपराज थे, 9 लाख गौएं इनकी खास अपनी थी, और ऐसा बच्चा इकलौता पुत्र वो दूसरे के घर में जाए और वो घर वाले भी आया करके माता को सुनाए कि तुम्हारा बेटा ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो माँ को बहुत चिंता हो, इसीलिए वो दही मथने लगी, दही मथ रही थी। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं माँ यशोदा का, किस प्रकार वात्सल्य भाव के साधक को माँ यशोदा का ध्यान करना चाहिए, इसका वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किए। जानी जानी हगीतानी तदबाल चरितानी चा दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। जो जो बाल चरित श्री कृष्ण किए थे ब्रज में, नवनीत चोरी आदि जो भी बाल लीला किए थे, और जिन लीलाओं को ब्रज के महान कवियों ने गीत में बंद किया था, गीत में बांधा था, अथवा सुखदेव गोस्वामी का कहने का आशय है कि जिन जिन बाल चरित्रों को मैं तुम्हारी सभा में कहा हूँ परीक्षित, माँ यशोदा उन सारी लीलाओं को दधि मंथन के समय गा रही थी। दधि निर्मंथने काले, कि और कभी समय नहीं मिलता था माँ यशोदा को कृष्ण कीर्तन गाने का, कृष्ण की लीला गाने का कभी समय नहीं मिलता था। और माँ है तो क्या अपने बेटे का भजन चालू करे, वैष्णव गीत संग्रह से गाना चालू करे, ऐसा तो कर नहीं सकती थी। दधि मंथन के समय ही उसको अवसर मिलता था अपने पुत्र के चरित्र के गाने का, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दधि निर्मंथने काले स्मरंती तानी, तानी स्मरंती और तानी अगायत, स्मरण करती थी। स्मरण ऐसा न समझिए कि जैसे कोई साधक शरीर को सीधा करके आसन लगा करके स्मरण करने की चेष्टा करे, उस तरह से माँ यशोदा कर रही थी, नहीं, उसके वात्सल्य स्निग्ध हृदय पर लीलाएं अपने आप आ रही थी। जब सुन करके भगवान कृष्ण में मन तन्मय हो जाता है तो जिसकी गोद में श्री कृष्ण खेल रहे थे, रात को जिसमें के गोद में चिपक कर सोते थे, माँ माँ कहते थे, अस्तन पीते रहते थे, उसको भगवान की लीलाओं का स्मरण कितना होता होगा इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। कृष्ण का चलना, रूठना, बोलना, हंसना, खाना, और भी बाल चरित्र, पूतना, बध आदि जो भी थे सब याद आ रहे थे। यानी यानी गीतानी इह ब्रजे, यानी यानी गीतानी कथम भूतानी गीतानी तद बाल चरितानी च, और कोई गीत नहीं, तद बाल चरितानी तस्य कृष्णस्य बाल चरितानी गीतानी, और वो अभी इह, यह का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं तव समाज। महाराज परीक्षित की सभा में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मैं जिन जिन चरित्रों का वर्णन किया, इह अथवा सुखदेव गोस्वामी का भाव है इह ब्रजे, ब्रज में श्री कृष्ण के बाल लीलाएं बहुत प्रसिद्ध। बताइए वे लीलाएं हुई हैं, कम से कम 5000 वर्ष बीता है, फिर भी आज हम लोग गाते हैं तो लगता है भगवान हमारे आंखों के सामने नाच रहे हैं, छिड़क रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं। जो भी लीलाएं कर रहे होंगे ब्रज में, तो कितनी अमिट छाप, कितना स्मरण होता होगा लोगों को, चारों तरफ तो वही चर्चा चलती थी। आज मेरा ये करके चला गया, आज मेरा ये करके चला गया, घर के लड़कों को रुला दिया ये किया वो किया। एक श्लोक में लिखा गया है, श्रीपाद रूप गोस्वामी जी को उद्धृत किए हैं पद्यावली में, तो श्री कृष्ण एक गोपी के घर में चोरी करने गए प्रथम बार, अभी अनजान चोर थे, बहुत अनुभव नहीं था। गए तो मटका उठा लिए छोटा सा, उठा कर कैसे खाने जा रहे थे, तब तक मणि के स्तंभे में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। तो कृष्ण तो बड़े कहा गए, तो बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे पता नहीं था कि ये पहरेदार यहाँ पर है, अपना ही प्रतिबिंब देख करके डर गए बिल्कुल, और कहने लगे बेचारा बन करके, देखो मित्र मैं नंद बाबा की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं कभी चोरी नहीं किया, ये प्रथम बार तुम्हारे घर में आ गया और देखो किसी से मत कहना, हल्ला मत करना, मैं मक्खन लेकर के तुमको दूंगा। तो गए मटका लेकर के आए और कहे कि लो तुम खा लो, कहना मत। तो ऐसे खिला रहे थे अपने ही प्रतिबिंब को, वो तो माखन गिर जा रहा था नीचे, प्रतिबिंबित लड़का खा नहीं रहा था। तो कहते हैं पूरा लोगे पूरा बर्तन लेना चाहते हो क्या? तो पूरा बर्तन ऐसे देते थे तो वो तो ले नहीं सकता था, सट करके बर्तन नीचे गिरने जैसा होता था। तो कृष्ण कहते हैं नहीं मानोगे, जा सारे कह देना, जो कुछ करना हो कह लेना, देख लेंगे। इतना कहकर चले भाग। गोपी तब तक हंसी, वो घर में दूसरी गोपी भी ये बात सुन रही थी और उसको हंसी छूटी तब तक कृष्ण के चरण छूटे, वो भागे जल्दी से जल्दी। बाप रे बाप, बहुत खतरा में पड़ गया था। इस तरह की बाल लीला इनकी चलती थी, ये बाल चरित। भगवान की इन बाल लीलाओं ने महान भक्तों के और योगियों के चित्त को जितना आकृष्ट किया है, उनकी अन्य लीलाएं नहीं आकृष्ट कर सकी। आज तक महाराज परीक्षित ने कहा है कि आज तक कवयः गायन्ति, विद्वज्जन भगवान की बाल लीलाओं को गाते रहते। तो माँ यशोदा दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत, स्मरण कर रहे थे और गा रहे थे। स्मरण जैसे जैसे होता था हृदय में वो गाते जाते थे, दही मथ रही थी लेकिन दही मथने का ध्यान निरस्त हो गया था। जैसे कोई व्यक्ति काम करता है तो काम हुआ नहीं हुआ, पूरा होना अब बंद करना चाहिए, ऐसे इसका ध्यान नहीं था। कृष्ण के चरित्र याद आ रहे थे, कृष्ण की बहुत सी चेष्टाएं और उसको गाने में तन्मय थी। गाते समय माँ यशोदा के सौंदर्य का वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी करते हैं। एक तो सर्वांग सौंदर्य दो शब्द से वर्णन करें, शुभ्रु और बृहत कटितटा। शुभ्रु आगे वाले बड़े श्लोक में आ रहा है। शुभ्रु सु का अर्थ है सुंदर और भ्रु का अर्थ भौ है। सुखदेव गोस्वामी जब माँ यशोदा का ध्यान कर रहे हैं सवेरे सवेरे दधि मथते समय, तो कृष्ण की जैसे जैसे बाल लीलाओं का स्मरण माँ को हो रहा है उसके अनुसार उसकी भावें चल रही हैं। कभी माँ मुस्कुरा रही है, कभी डांटने का भाव कर रही है, यदि वो दही मथ रही है लेकिन उसकी भावें कृष्ण के पास है स्मरण में, तो उस बहुत सुंदर भाव संचालन हो रहा है। और बृहत कटी तटा, कटी तट कटी के नीचे के भाग को, कमर के नीचे के भाग को कटी तट कहते, बड़े बड़े थे नितंब, बड़े बड़े थे। तो इन दो शब्दों के द्वारा माँ यशोदा के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जो परम सुंदर भगवान की माँ बन सकती है तो वह भी तो उतनी ही सुंदरी होगी ना, यह समझने की बात। भगवान की माँ भगवान के समान सुंदरी है। तो दो शब्दों में सुखदेव गोस्वामी एक प्रकार से सर्वांग सौंदर्य का वर्णन किए। क्षौमम वास पृथु कटे कटितटे बिव्रति सूत्र नब्धम। क्षौम वास, क्षौम वास का अर्थ रेशमी वस्त्र, वास का अर्थ वस्त्र, क्षौम रेशमी, रेशमी वस्त्र पहनी थी। ब्रज की स्त्रियां दो वस्त्र पहनती हैं, नीचे लहंगा पहनते हैं और ऊपर चुनरी ओढ़ती हैं। माँ यशोदा भी एक ब्रज की गोपी है, इस तरह से वो भी ऐसा ही पहनी है, लहंगा बहुत बड़ा होता है, तो रेशमी वस्त्र पहनी है। कुछ विचार करके माँ यशोदा ने रेशमी लहंगा पहना। ऐसे सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं स्वाभाविक ही वो प्रतिदिन पहनती थी, और एक भाव करते हैं कि इस कर्म में कोई दोष न रहे, सबसे उत्तम कोटि का वस्त्र पहन करके तब अपने पुत्र के लिए नवनीत उत्पन्न कर रही है दधि मत करके, इसके लिए उसने रेशमी वस्त्र पहना। क्षौमम वास, विभ्रति सब जगह लगेगा, वस्त्र पहनी थी और पृथु कटी तटे, माँ यशोदा के विशाल नितंब पर रेशमी लहंगा बहुत अच्छा लग रहा था। विभ्रति सूत्र नद्धम, और उस लहंगा के ऊपर सूत्र बंधा हुआ, सूत्र नद्धम, यहाँ सूत्र से शब्द है करधनी, आशय सोने की करधनी उस साड़ी के ऊपर बांधी थी माँ यशोदा। सुखदेव गोस्वामी कथा कहते समय माँ यशोदा का ध्यान कर रहे हैं, किस तरह से उद्धी मत रही हैं। पुत्र स्नेह स्मृत कुछ जुगम, और माँ यशोदा के दोनों स्तन पुत्र स्नेह से स्मृत हो रहे थे, चू रहे थे। तो माँ यशोदा के स्तनों से निकले दूध के कारण कंचुकी भींग गई है, उसी का ध्यान सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। हाथ लगे हैं दधिमंथन में लेकिन दोनों स्तनों से दूध चुचुआ रहा है, कंचुकी भींग गई है, और माँ को अपने शरीर का ध्यान नहीं है, अपने पुत्र के स्नेह में दधि मथ रही है और गान का आवेश है। बाल लीला जो स्वयं आंख से देखी है और गोपियों के मुख से सुनी है उसी को गा रही है। पुत्र स्नेह स्मृत कुछ जुगम, कुछ जुगम, दोनों कुछ, दोनों स्तन चुचुआ रहे हैं, दूध चू रहा है। क्यों? पुत्र स्नेह, अपने पुत्र कृष्ण के वात्सल्य की बाढ़ से स्तनों में दूध आ रहा है। एक आचार्य ने लिखा है कि माँ यशोदा के स्तनों में जो दूध है वो दूध बेचारा अफसोस कर रहा है कि आज माँ ऐसा नवनीत निकालने जा रही है कि कृष्ण इसको खा लेंगे तो हमको नहीं पिएंगे। तो शायद वे इसीलिए बाहर आना चाहते हैं कि माँ देख ले कि हमारा क्या होगा। हो सकता है आज से कृष्ण स्तन पीना छोड़ दें अगर खूब सुंदर माखन खा लेंगे। तो वे बाहर आ रहे थे क्योंकि अप्राकृत जगत का सब कुछ अप्राकृत है, स्पिरिचुअल है, तो माँ यशोदा का दूध भी अप्राकृत है। इसलिए आ रहा है कि मैं हूँ ही, कृष्ण तो हमको पसंद करते हैं, तो वे स्तनों से बाहर आ रहा है दूध। जात कंपम पर भी आचार्य टीका कर, जात कंपम, स्तनों में कंपन हो रहा है, ऐसे तो स्वाभाविक ही दही मथने से स्तनों में कंपन होगा ही, हिलेंगे, परंतु कुछ विशेष रूप से स्तन कांप रहे हैं कि माँ इतनी तन्मयता के साथ प्रेम के साथ मक्खन निकाल रही है तो कृष्ण पहले की तरह बड़े प्रेम से चाव से हमें नहीं पिएंगे, तो इसलिए वे कांप रहे थे प्रेम की व्यग्रता में, विकलता में। शुभ्र रज्ज्वा कर्ष श्रम भुज चलत कंकड़ कुंडले च। रज्जु आकर्षक, माँ यशोदा खींच रही थी रस्सी तो उसे परिश्रम हो रहा था, बड़ा मटका था, कभी दही मथी नहीं थी, रानी थी तो इसलिए परिश्रम हो रहा था। और दोनों भुजाओं में कंकड़ थे, चूड़ियां थी, तो वे बहुत ही सुंदर झनकार करती हुई बोल रहे थे। तो हाथों के कंकड़ झनझन शब्द कर रहे थे और कुंडले च, कान के कुंडल हिल रहे थे, और इस तरह से गा रही थी और दही मथ रही थी। और कृष्ण की भिन्न भिन्न बाल लीलाओं का आवेश आ रहा था, तो उसके अनुसार भी वो उसके शरीर की गतिविधि होती जाती थी। जैसे लगता था कभी कृष्ण को गोद में ले रही है, कभी उत्तोलन कर रही है, फिर रस्सी को छोड़ नहीं रही थी, दधी मथ रही थी, रस्सी पकड़ी थी, लेकिन ऐसा शरीर में भाव उत्पन्न हो रहा था, तो इसलिए कुंडल हिल रहे थे कान के। स्विन्नम वक्त्रम, और वक्त्रम स्विन्नम, मुख पर, मुख कमल पर पसीने की बूंदे उभर आई थी। सवेरे का समय था लेकिन परिश्रम हो रहा था, तो इस कारण से परिश्रम श्वेत बिंदु आ गए थे मुख पर। स्विन्नम वक्त्रम, कबर बिगलन मालती, और जो कबर केश बंध में मालती के पुष्प खोसी थी, माला खोसी थी, वे माला बिखरने लगी, पुष्प गिरने लगे नीचे। इसका अर्थ है कि माँ को अपने अलंकार का, अपने देह का ध्यान नहीं है, इस तरह से भगवान की सेवा में तन्मयता होनी चाहिए। तो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं है और कितना परिश्रम हो रहा है इसका भी भान नहीं है, और अपना श्रृंगार बिगड़ रहा है, अपना केश खुल गया है और केश में मालती की मालाओं के पुष्प बिखर रहे हैं, इसका भी ध्यान नहीं। यह है आवेश सेवा का, वात्सल्य का। तो इस तरह से जब माँ मथ रही थी अपने पुत्र के लिए दही नवनीत खिलाने के लिए, तब श्री कृष्ण पर इसका क्या असर हुआ? श्री कृष्ण प्रतिदिन की अपेक्षा आज शीघ्र उठ गए, पहले उठ गए सज्जा छोड़ करके। और ऐसा होता था कि प्रतिदिन जब वो जगते थे तो माँ गोद में लिए रहती थी, उसी समय जगते थे, माँ बहुत पहले जग जाती थी लेकिन फिर भी कृष्ण सोते रहते थे तो वहीं बैठी रहती थी, और जगते ही वे माँ के गोद में चढ़ जाते थे, पकड़ लेते थे, पीते थे। और आज जब कृष्ण की नींद खुली तो देखे माँ नहीं है, माँ तो दही मंथन कर रही थी। तो बाल्य आवेश में माँ के प्रति अतिशय स्नेह होने के कारण वे रोने लगे, यद्यपि रोने लगे यह भाव व्यक्त करते हैं कि क्षुधा के कारण रो रहे हैं, भूख के कारण रो रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे नाटक किया करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी प्रवीण होते हैं, इसमें भूख बहुत नहीं होती फिर भी भूख होने का नाटक करते हैं, रोने जैसा करते हैं। तो जगे और ये जोर से रोए पहले कह करके, ए करते हुए कहाँ गई कहाँ गई, इस तरह से उनका भाव था। और माँ यशोदा को इसका कोई ध्यान नहीं था कि कृष्ण रो रहा है या क्या कर रहा है। इसके बाद जिधर से आवाज दही की आ रही, दधि मंथन की, उठ करके चले, स्वयं अपने भोजन के खोज में कृष्ण निकले, माँ यशोदा को पाने के लिए और भोजन पाने के लिए चले गए। देख लिए भगवान, समझ लिए सर्वज्ञ भगवान के लिए क्या कठिनाई है, वो समझ गए कि माँ तो बिल्कुल अविष्ट है, मेरा स्मरण ही नहीं है, मेरा मतलब बेड पर पड़े हुए कृष्ण का स्मरण नहीं है, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण चल रहा है। तो गए तो उन्होंने सोचा कि कैसे माँ के ध्यान को भंग करना चाहिए। तामस्तन्य काम आसाद्य मथनंतिम जननीम हरिहि गृहीत्वा दधि मंथानम निषेधत प्रीतिमा वहन। कृष्ण का चातुर्य देखिए, वे गए, उन्होंने सोचा कि माँ का ध्यान अपने तरफ कैसे आकृष्ट करूं। छोटा सा बच्चा थे वे, अब चलते थे उस समय, घूमते थे, दौड़ते भी थे लेकिन बहुत छोटे थे, तो जाकर दधि मंथन का जो दंड था, जो मटका में डूबा रहता है, जो लोग देखे होंगे मंथन करते हुए, वो लोग जल्दी समझ जाएंगे कथा को गांव में किस तरह से मथा जाता है दधि। तो कृष्ण दोनों हाथ से पहले डंडा पकड़ लिए, दंड ब्रेक लगा दिए, तो माँ का ध्यान गया और इतना अपना थोड़ा सा बल भी आविष्कार किए हुए। अगर छोटा बच्चा पकड़ भी रहा है तो माँ अगर जोर से करे तो बच्चे के पकड़ने से क्या होगा, वो तो चलता रहेगा। लेकिन श्री कृष्ण भी खूब जोर से अपना ऐश्वर्य लगा करके कुछ ब्रेक लगाए तो माँ का ध्यान गया, बंद क्यों हो गया एकाएक, देखती है कि कृष्ण आ गया। और उस समय भी ये कर रहे थे, आंखें मल रहे थे जग करके। तो माँ का ध्यान गया तो बहुत प्रसन्न हो गई, प्रीतिम आवहन। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण के वहां आने से, मंथन दंड पकड़ने से माँ बहुत प्रसन्न हुई और आगे भी उनकी चेष्टाओं से वो बहुत प्रसन्न हुई। पहली प्रसन्नता तो ये हुई कि इसको बुद्धि कैसे आई कि यहाँ से रोक देने से काम रुक जाएगा। तो माँ बहुत प्रसन्न हुई अपने बच्चे की इस बुद्धि के विकास के कारण कि बच्चा है लेकिन धीरे धीरे समझ रहा है तो उस मंथन दंड के ब्रेक से, मैसेज से वो बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन देखने लगी क्या करता है। जब माँ रुक गई तब श्री कृष्ण अपना एक पैर दिए मटका पर और माँ का बांह पकड़ लिए दोनों हाथों से और मटका पर पैर दिए और धीरे धीरे गोद में चढ़ गए। माँ ने गोद में चढ़ाया नहीं, लिया नहीं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तमंक मारूढ़ पायत स्तनम तम अंकम आरूढ़ स्तनम अपायत। गोद में अंक में चढ़े हुए को स्तन पिलाने लगी। गोद में लिया जसोदा ने इसका वर्णन नहीं है। आरूढ़ कृष्णम स्तनम अपायत, स्तन पिलाने लगी। तो कृष्ण स्वयं चढ़ गए तो यह अभी माँ के लिए बहुत खुशी की बात थी। पहली प्रसन्नता यह हुई कि हमारे बच्चे के हाथ में शक्ति है, क्योंकि हमारे चलाने के बाद भी मंथन दंड पकड़ा और जोर लगाया तो बंद हो गया और ये पता नहीं था कि ये ईश्वर है या भगवान है तो उससे प्रसन्नता हुई कि हाथ में बच्चे की शक्ति है और बुद्धि भी है। इसके बाद चढ़ गया गोद में। कृष्ण को पता है कि हमारा भोजन कहाँ है, हमारे जननी के, हमारे माँ के स्तनों में हमारा भोजन है, इससे तो वे चिर परिचित हैं। वे पहुंच गए और माँ ने अपना कंचुक भी नहीं हटाया, कृष्ण स्वयं ही कंचुक हटा करके और माँ के स्तनों को पकड़कर पीने लगे। और जब पीने लगे तब माँ ने दधिमंथन का काम छोड़ दिया। शास्त्रों को के अध्ययन को भी मंथन कहा गया है। इस पर एक भक्त टीका करते हैं कि भगवान ने मानो ये संकेत किया कि सारे शास्त्र का मंथन किया जाता है मेरी प्राप्ति के लिए, तो जब मैं मिल गया तो अब मंथन क्या करना है मंथन छूट गया क्योंकि वह मंथन शास्त्र मंथन नहीं था, वास्तव में भगवान की सेवा थी। लेकिन आगे जो भी था अब मंथन रुका तो रुका, रुक ही गया, केवल रुका ही नहीं वो मटका भी फूटेगा, तो सारी क्रिया ही ठप होगी बाद में तो श्री कृष्ण चढ़े गोद में और पीने लगे। ताम आसाध्य, ऐसी माँ के पास कृष्ण गए जो सेवा में लगी हुई, कृष्ण के वात्सल्य स्नेह से भरी हुई। ताम आसाध्य, भगवान स्वयं गए। यहाँ बहुत सी बातों का संकेत है भक्तों के लिए कि माँ नहीं गई कृष्ण के पास, कृष्ण स्वयं आए माँ के पास, क्योंकि वह उनके प्रेम से भरी हुई थी। स्वयं आए, प्रतिदिन माँ स्वयं बेड से उठाती थी, गोद में लेती थी, आज स्वयं चल करके वो आए। श्रील हरि सूरी जी जो भागवत के एक बहुत बड़े टीकाकार हैं कहते हैं भगवान इसे यह शिक्षा दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने अपने संस्कार के अनुसार अपने दैहिक कार्य में या पारिवारिक कार्य में लगा हुआ है, परंतु जो कुछ भी हो उस समय भी यदि वह भगवान की लीलाओं का प्रेम से गायन करे तो भगवान अपना सारा कार्य छोड़कर उसके पास आ जाएंगे। भगवान सो रहे थे लेकिन निद्रा त्याग कर भगवान आ गए। तो मुख्य साधन क्या है? भगवान की लीलाओं का गान, बस। चाहे अपना घर का काम भी आदमी कर रहा है लेकिन गान होना चाहिए। गान हो रहा है तो भगवान आएंगे ही। माँ यशोदा कोई भजन नहीं कर रही थी कृष्ण का, कृष्ण को बुलाने का। उसके मन में ऐसा संकल्प नहीं था कृष्ण हमको मिले या ये करे वो करे। वो तो गोपी थी और गोपी का काम है मंथन करना, वो भी अपने पुत्र के लिए और सबके लिए, इसलिए कर रही थी। भगवान के लिए नहीं कर रही थी, वो अपने पुत्र के लिए कर रही थी। पुत्र भगवान है उसका ये दूसरी बात हुई, लेकिन अपने पुत्र की ममता में काम कर रही और गा रही है कृष्ण की लीलाओं को, अपने पुत्र की लीला को। तो भगवान सब कुछ छोड़ करके आ गए। श्रीमद् भागवतम में जब जब भगवान की प्राप्ति हुई है किसी को, तो आप देखेंगे दशम स्कंध में खास करके गीत गाने पर ही हुई है। जो गोपियों ने गीत गाया जमुना के पुलिन पर आकर, तब भगवान प्रकट हुए रासलीला में। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम् राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। तो कृष्ण को से भेंट करने की लालसा से गोपियां रोने लगी और गाने लगी। तासा माविर्भूत छौर इसमें मान मुखाम बुझ पीताम्बर धरस रघु साक्षण मनमत मनमत। तब तो प्रकट हुए। यहाँ माँ यशोदा गा रही है तो भगवान उसके पास आ गए। ऐसे किसी ने भगवान की भक्ति किया है पहले प्रचुर मात्रा में और अब किसी कारण से भक्ति छूट भी गई है, तो भगवान उसके पूर्व भक्ति की याद करते हैं और उस भक्त को प्राप्त होते हैं। जैसे मुचकुंद महाराज, मुचकुंद महाराज एक गुफा में सो रहे थे तमोगुण में, लेकिन सोए हुए भक्त के पास भगवान दौड़े हुए गए, कालजवन को लेकर के दौड़ करके गए। और वहां पर भगवान ने अपने मुख से कहा है कि हे महाराज स्वयाहम प्रार्थितम भूरी, आपने मेरी बहुत भक्ति की है पहले और मुझे आप देखना चाहते थे, बहुत मेरी भक्ति आपने किया है, उसका स्मरण करके मैं आपको दर्शन देने आया हूँ। वर्तमान में वो कोई भजन नहीं कर रहे थे महाराज, मुचकुंद महाराज सोए थे और सोए थे। और सच बात यह है कि जब काल जवन उनको लात मारा कि आ करके सो गए हो, समझा कि कृष्ण है, तो मुचकुंद महाराज क्रोधित हो गए, क्रोध आया और क्रोध से उन्होंने देख दिया वो जल कर राख हो गए। तो यह तो कोई भजन की स्थिति है नहीं कि किसी को देखिए वो जल कर राख हो जाए और फिर चादर तान करके सो जाए। तो कोई मंगल आरती में जगाने जाए तो उसी से झगड़ा कर लीजिए, जो भस्म नहीं कर देते हैं यही काफी है। तो यह उनकी भजन की स्थिति नहीं थी मुचकुंद महाराज की, लेकिन भगवान सर्वदर्शी भक्त के पूर्व में की गई सेवा को, भजन को देख रहे हैं, इसने मेरे लिए ये किया। और भी कई स्थान हैं जहां भगवान पुकारने पर आते हैं, गाने पर आते हैं। हम लोगों को भी जो भी साधन भजन सिखाया गया है इसमें गान ही प्रधान है, बारंबार गाने को आ जाता है। आरती भी हो रही है तो गाते हुए हो रही है, चलते हैं तो जप रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं। ये कथा भी गान ही कहा जाता है, बखान करना, गान करना। तो माँ गा रही थी तब कृष्ण मिले, इसके द्वारा साधन का संकेत है। हरि शब्द का क्या अर्थ है? भगवान कृष्ण न कहकर के कहते हैं हरि, जाकर जननी को न्यसेधत रोक दिए दधिमंथन से। यहाँ हरि का अर्थ है माँ यशोदा के मनोभाव का अनुवाद सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। कृष्ण का मनोभाव क्या है? जननी, वे अपने माँ को रोक रहे हैं, जानते हैं मैं इसके गर्भ से जन्म लिया हूँ, मेरी माँ है, मैं रोकूंगा या डिस्टर्ब करूंगा तो मुझसे स्नेह करेगी, मुझे दूध पिलाएगी, ऐसा नहीं कि डांटेगी कि क्यों रोक रहे हो, जाओ भागो एक काम पूरा कर लेने दो तब आना, ऐसा नहीं कहेगी। इतना वात्सल्य में इतना स्नेह है माँ का, कृष्ण के लिए ही तो मथ रही है, फिर भी कृष्ण को विश्वास है कि मैं रोकूंगा तो रुक जाएगी, मुझे दूध पिलाएगी। और माँ यशोदा हरि के रूप में देख रही है, हरि का यहाँ अर्थ है कृष्ण का वहाँ रुदन मुख आना, रोकना, दधिमंडन मंथन पकड़ करके फिर गोद में चढ़ना, सब मनोहारी लीलाएं हो रही थी। माँ यशोदा का मन पूर्णतः कृष्ण को देखने में, छूने में, दूध पिलाने में लग गया, इसलिए हरि शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। श्री कृष्ण माँ यशोदा के मन का हरण कर रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। साधारण बच्चा भी इस तरह की चेष्टा करता है तो माँ के हृदय में आनंद की धारा उमड़ जाती है, जहाँ साक्षात परब्रह्म है, माँ बना करके पुत्र के रूप में लीला कर रहे हैं, तो उस माँ के हृदय में आनंद का उच्छ्वास आ जाए, इसमें क्या कहना है। तो रोक दी और माँ यशोदा बहुत प्रसन्न हुई। तमंक मारूढ़म पायतस्तनम स्नेह स्मृतम सस्मितम इच्छति मुखम। तम अंकम आरूढ़म स्तनम अपायत, पिलाने लगे, स्तन पिला रही है, और स्तन पिलाते समय एक और भी सुख माँ को मिल रहा है, कृष्णस्य मुखम निरीक्षति, कृष्ण का मुख देखने लगे। कथम भूतम मुखम सुस्मितम, कृष्ण के मुख पर बहुत सुंदर मुस्कान आ रही थी, मतलब बच्चा आनंद में था जब सफल हुआ इस तरह से। एक तो दधिमंथन दंड पकड़ा तो दधिमंथन का कार्य रुक गया, ये प्रसन्नता का कारण था। गोद में चढ़ गया और पीने लगा, तो पीने में कृष्ण को अपने ओठों को बहुत दबाना नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने से अपने आप दूध चुचुआ रहा था, तो बहुत इजीली, बहुत आसानी से दूध निकल रहे थे इस कारण से, और दूध में अद्भुत स्वाद था, इस कारण से श्री कृष्ण के गाल पर मुस्कान बिखरने लगी। और माँ इसको देख रही है, बच्चा पूर्ण निरोग है, पूर्ण स्वस्थ है, और दूध पी करके आनंद का अनुभव कर रहा है, और अपनी सफलता पर उसे बहुत खुशी हो रही है। वहां से चला जिस उद्देश्य से दूध पीने के लिए, कितनी सफलता पूर्वक पी रहा है और आसानी से, सुगमता से, दूध है अपने आप निकल रहे, थोड़ा सा अपना हल्का ओठ लगाते होंगे, कृष्ण अपने ओठों से थोड़ा दबाते होंगे और दूध निकल आता होंगे, तो इसलिए बहुत प्रसन्न थे, और स्वाद के कारण। तो सस्मितम मुखम इच्छति, श्री कृष्ण के मंद मुस्कान से युक्त मुख को देखती जाती थी, यह है माँ यशोदा का अद्भुत सुख। ध्यान रखे कि वात्सल्य भाव ठीक जस्ट माधुर्य भाव के पहले है, इसमें और सारे भाव विकसित रहते हैं, दास्य भाव, सख्य भाव और सब, माधुर्य केवल नहीं रहता है, लेकिन यह पूर्ण विकसित रस है। श्री कृष्ण को खिलाकर, पिलाकर, नहलाकर, सजा करके, और उनको हंसते हुए देखना, उनको चूमना, गोद में लेना, यहाँ तक कि कृष्ण को डांटना, मारने की धमकी देना, यह सब वात्सल्य के सुख है। और भगवान इस तरह अपने भक्त की वश्यता को स्वीकार कर अपने भक्त को सुख देते। तो माँ दूध पिला रही थी, कृष्ण पी रहे थे, माँ का दूध घट नहीं रहा था, क्योंकि वह गोलोक वृंदावन का दूध है, अप्राकृत जगत का दूध है, वो घटने वाला नहीं था। जैसे इधर जगत में कोई माता अपने पुत्र को दूध पिलाती है तो दूध थोड़े ही समय में समाप्त हो जाता है, वैसा वो दूध नहीं। हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में, भगवान जब कुरुक्षेत्र में युद्ध में भाग लिए, अर्जुन के सारथी बने, तो उस समय वे 100 वर्ष के थे, लेकिन वहां से जब द्वारका लौटे तो माँ देवकी के स्तनों से दूध चू रहा था, ये प्रथम स्कंध में वर्णन। 100 वर्ष के बाद भगवान आए हैं, फिर भी उनको देख करके, उनसे मिल करके माँ के स्तनों से दूध चूरा। और देवकी ही नहीं, देवकी की अन्य बहनें भी, वसुदेव जी की जो पत्नियां थी, सबके स्तनों से दूध चू रहा था कृष्ण को देखते ही। तो अप्राकृत जगत का जो संबंध है माँ यशोदा और कृष्ण का, वो सदा रहेगा। कृष्ण सदा पुत्र हैं और यशोदा सदा माँ बनी रहेगी। और इसी तरह से कोई भी भक्त कृष्ण को अपना पुत्र मान करके माँ यशोदा का अनुगमन करता है, भगवान से इस तरह प्रेम करता है, तो सदा के लिए माँ बना रहेगा, उसमें कभी काल का व्यवधान नहीं है। तो माँ यशोदा का दूध कम नहीं हो रहा था और श्री कृष्ण प्रेम के भूखे हैं, इसलिए उनकी तृप्ति भी नहीं हो रही थी। माँ यशोदा दूध पिलाने लगी, कृष्ण पीने लगे। ये दूध पीने और पिलाने की लीला चलने लगी तो वहां पर पद्मगंधा गाय का दूध औटा जा रहा था। माँ यशोदा कृष्ण को एक भीतर घर में लेकर के खड़ी थी, दूध पिला रही थी मंथन स्थान पर, और घर के बाहर आंगन में अंगीठी पर रखा गया था दूध, तो वह दूध भी कृष्ण के लिए रखा गया था। गाय का दूध पीते थे, माँ का दूध पीते थे, गाय का दूध पीते थे। अरे वो तो 84 कोस के सारे दूध दही को खाते थे उनके लिए क्या असंभव है। तब तक अकस्मात दूध में उफान आया, अब से आज के कारण चाहे जैसे भी। आचार्य ग्रंथ कहते हैं कि उस दूध ने सोचा कि मैं आग में जल जल कर तपस्या कर रहा हूँ और श्री कृष्ण माँ यशोदा का दूध पीकर तृप्त हो जाएंगे तो मेरी तपस्या तो सब व्यर्थ हो जाएगी, मैं ऐसे जल रहा। इसलिए माँ में दया उत्पन्न करने के लिए आत्महत्या करने की सोचा, उफान करके मटके से बाहर होकर के जल करके मर जाए। वैसे भी क्या रह करके करूंगा जो कृष्ण के काम में नहीं आऊंगा, जो कृष्ण माँ का दूध पी रहे हैं तृप्त हो जाएंगे। तो माँ यशोदा की दृष्टि पड़ी दूध के उफान पर, तो उसने कृष्ण पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। इतना सुखी कृष्ण थे, स्तन पी रहे थे, लेकिन तुरंत उतार करके उनको रख करके और दौड़ी। और इसी पर कृष्ण को बहुत क्रोध हो गया। अब तक तो आनंद की लीला चल रही थी और अब माँ गई उतारने के लिए। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं तो कृष्ण तो बहुत हल्के थे, गोद में थे, तो उनको लेकर कहीं क्यों नहीं गई, ये प्रश्न उठता है। कृष्ण को गोद में लेकर के गई होती फिर उतार दी होती तो स्वयं उत्तर देते हैं कि नहीं, ऐसा संभव नहीं। बच्चा गोद में है और वहां जाकर बर्तन को दोनों हाथ से उतारना पड़ेगा, चूल्हे से दोनों हाथ, वो भी कपड़ा लेकर के उसके मुख को पकड़ करके उतारना होता है, तो दोनों हाथ लगेंगे। और दूसरी बात है, जाने में जल्दी करना था तो जल्दी चलने में बच्चे को घाव लग सकता था, उनको ठीक से ले करके नहीं जा सकती थी, इसलिए उतार करके चली गई। अतृप्तम उत्सृज्य, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान के भाव का अनुवाद करते हैं, भगवान ऐसा महसूस कर रहे थे अतृप्तम, इतना सुंदर दूध लग रहा था, इतना स्वादिष्ट माँ यशोदा के स्तन का दूध लग रहा था कि श्री कृष्ण को पीते पीते तृप्ति नहीं, अतृप्त रह गए। और ये ऐसी माँ निकली कि थोड़े से दूध की हानि भी नहीं सह सकती थी। हमको दूध पिलाने का इसने कोई ध्यान नहीं रखा और जा करके दूध बचा रही है। भगवान छोड़े कि भगवान ने सोचा कि मैं क्षीर समुद्र छोड़कर आया हूँ, कितना दूध है ऐसे अनंत भरा हुआ है, मैं क्षीर समुद्र छोड़ करके आया, इसका पुत्र बना और ये मुझे छोड़ करके एक छोटा सा 1-2 किलो दूध बचाने जा रही है ये विचार भगवान को आए। एक टीकाकार ये बात कहते हैं थोड़े से दूध की हानि नहीं सह सकते। वास्तव में भगवान को भी एक किनारे रख करके भगवान के सेवा संबंधित वस्तुओं की हिफाजत की जाती है, यह भक्ति भगवान के सुख के लिए, कृष्ण के लिए ही वो दूध था। तो माँ दौड़ी बचाने के लिए, तो संजात कोप स्फुरिता रोणाधरम संदस दद्वीर दद्मंत भाजनम, बस उधर उतार करके गई कृष्ण को, इसी पर कृष्ण को क्रोध आ गया। अब शुरू से अंत तक आप ध्यान करते जाए, कितनी सुखद लीला थी माता और पुत्र का, दोनों का कितना बड़ा आनंद था। वो पिला रहे थे आनंद में, वो भी पी रहे थे, लेकिन उसी कृष्ण के लिए, अपने बच्चे के लिए ही वो दूध बचाने चली गई, तो कृष्ण को क्रोध आ गया। यह क्रोध भी माँ को सुख देने के लिए ही हुआ है। देखने में लगेगा कि माँ मार रही है कृष्ण को, ताड़ना कर रही है, डांट रही है, लेकिन वह भी एक अद्भुत सुख है। उस सुख को देने के लिए ही भगवान क्रोध किए। एक टीकाकार कहते हैं, क्रोध धन्य हो गया भगवान के ओठों का स्पर्श प्राप्त करके। पहले उनके ओठ फड़कने लगे, इतना क्रोध हो गया, लाल लाल छोटे छोटे ओठ फड़कने लगे, तो अभी छोटे छोटे दांत उग रहे थे, तो दांतों से अपने लाल लाल अधरों को दबाए। ये क्रोध की एक मुद्रा होती है। हरि सूर्य जी कहते हैं कि लगा कि जैसे सत्वगुण रजोगुण पर शासन कर रहा है, कि रजोगुण तमोगुण, ये क्रोध तो रजोगुण से उत्पन्न होता है, वो लाल है और उजले उजले दांत जो है। भगवान ने सोचा कि क्रोध करना ठीक नहीं है, तो सत्वगुण के द्वारा मानव दबा रहे हैं, कंट्रोल में रहो इस तरह से कर रहे, और दबाए। और इसके बाद तुरंत वहां देखने लगे, जल्दी जल्दी में दही का मटका फोड़ना था। अरे भाई, दूध नहीं पिलाया, जा करके दूध उतार करके तो आएगी ही ना, कितना समय लगेगा, आधा मिनट लगेगा, उतार कर आएगी फिर पिलाएगी। माँ ने भी सोचा कि अपने छाती का दूध तो अपने बस में है, इसको तो कभी भी पिला दूंगी, लेकिन वो पद्मगंधा गाय का जो दूध उबल रहा है वो तो जल जाएगा, कृष्ण फिर भूखा रह जाएगा और फिर दूसरे के घर में जाएगा चुरा चोरी करने। इसलिए उसने सोचा कि अपने दूध को तो बाद में पिला दूंगी, उसको बचा लूं। पर कृष्ण इस पर विचार नहीं किया। कृष्ण तो बच्चा है, उनका भोजन कैसे चलेगा आगे, उनको क्या चिंता है, माँ को तो सब चिंता है। तो ये विचार नहीं कि वो आएगी और फिर हमें गोद में लेगी, पिलाएगी, बस इतने से ही क्रोध उमड़ गया। जब क्रोध क्या क्या किया, क्रोध क्या क्या करता है, सबका अनुभव है। क्रोध जब आ जाता है तो आदमी अपने घर का ही बर्तन फोड़ना चालू करता है, कभी कभी ऐसा देखा गया है। अब जो उपयोगी वस्तु है उनको भी तोड़ना है, फोड़ना है, नष्ट करना है, ये सब करता है। वो देखने लगे क्या करूं, मन में आया कि इस दही के मटके को ही फोड़ दे। किसको दंड देने के लिए, माँ को दंड देने के लिए। ये नहीं जानते हैं कि हमारे ही लिए सारा सब कुछ है, सारा ब्रजमंडल और यहाँ की सारी वस्तुएं केवल कृष्ण के लिए है। हम अगर उसको फोड़ रहे हैं तो अपना सामान फोड़ रहे हैं, पर क्रोध में विवेक नहीं रहता है, तो भगवान को भी विवेक नहीं रहा। और वहीं पर एक शिला पुत्र पड़ा हुआ था, शिला पुत्र मतलब पत्थर का एक टुकड़ा कहते हैं, वो शिला पुत्र कहते हैं वो मसाला पीसने वाला लोढ़ा, वो शिला का पुत्र होता है। सील समझते हैं, मसाला पीसने वाला एक सील होता है और उसका एक पुत्र होता है, उसी से उसको पीसते है। तो देखो वो मिल गया और ले करके बहुत जल्दी जल्दी में पेंदी के नीचे मारे, उस बर्तन के नीचे। ऊपर मारने पर ज्यादा आवाज करता क्योंकि वहां खाली था, जहां तक दही भरा हुआ था वहां मारने में आवाज कम करता है, इतनी बुद्धि थी कृष्ण को। और लेकर को मारे ठक से पूरा छेद हो गया, दही बलबल बलबल कर करके बहने लगा और फैल गया। और अब सोचे कि अब तो आएगी तो माँ मुझे मारेगी, तो क्रोध हुआ, क्रोध तो उतार लिया, दही का मटका फोड़ दिया, लेकिन अब अपनी रक्षा की चिंता है। कुछ भी है तो भगवान ही जानते हैं कि माँ यशोदा बहुत बलवान है, माँ है वो, तो बच्चा हूँ और गलती कर चुका हूँ, ये इतना भावना होने लगी। तो ये भागने की सोचे तो भागे, तो दही तो बहुत फैल गया था, कहाँ भागे। वही भगवान जो दो पग में सारा विश्व नाप दिए थे, अब दही की चौड़ाई को नहीं लांघ पाए। ऐसा नहीं कि छलांग मार करके भाग जाए, भागे तो उसी में छप छप दही में पैर करते गए और दूसरे घर में गए तो चरण चिन्ह उभरता गया ऐसे तो भागे। भगवान बाल लीला के आवेश में है, उनको ये भावना नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ परमेश्वर हूँ। और यह भी भगवान की एक भगवत्ता है वास्तव में, माधुर्य भगवत्ता सार, भगवत्ता का सार है माधुर्य। भागे माँ तो तुरंत उतार करके दूध को देखी कि पक गया है तो उतार करके आ गई, उतार करके आई। उतार जो गोपी सुसितम पय पुनः प्रविश्य संधि सच भग्न मत्रकम दध्य मत्रकम, वो आई तो देखी कि उतार जो गोपी सुसितम पय, वो बहुत अच्छा पक गया था दूध तो उसको उतार दी। उतार जक संस्कृत शब्द है, हम लोगों को अपनी भाषा बहुत मजबूती से पकड़ना चाहिए, संस्कृत ही मूल भाषा है वास्तव में। उतार करके आई वो गोपी। सुखदेव गोस्वामी गोपी क्यों कह रहे हैं, गोपी यहाँ कहने का आशय है कि बेचारी जानती थी कि हमारे घर में यही सब धन है, दूध दही आदि, और हमारे बच्चे की ये सब धरोहर, मतलब हमारा बच्चा उत्तराधिकारी होगा तो आज खाएगा पिएगा, पाल पोस करके रखना है, तो दूध दही को संभाल कर रखना है गोपी का काम है। इसलिए गोपी है तो दूध उतार करके रख करके आई। उतार गोपी सुश्रितम पय पुनः प्रविश्य, पुनः प्रविश्य फिर घर में प्रवेश की जहां दही मथा जा रहा था। दध मत्रकम भग्नम विलोक्य, तो देखी कि ये दही का मटका तो भग्न है, फूटा भांगा है, फूटा है। दही भी बिखर गया और सुतम च तत्र न विलोक्यति, और फिर तत्र न पश्यति, और अपने पुत्र को नहीं देखी। भावना एक सुतम मेरा पुत्र वो नहीं है, जहाँ उतार कर गई थी वह नहीं है और वो फूटा हुआ है। तो माँ जसोदा को यह समझने में देर नहीं लगी कि दही का मटका किसने फोड़ा है। कोई इस तरह के गुण इनके प्रकट पहले भी थे, इसलिए वो समझ गई कि इसी महाशय का काम है। वो तुरंत समझ गई, लेकिन जहाज हंसने लगे। मटका फूटने का या दही बर्बाद होने का दुख थोड़ा भी नहीं हुआ माँ को, जहाज हंसने लगे, हंसने लगे कुछ पुत्र के बुद्धि पर कि ऐसा मारा कि आवाज नहीं आई और इतनी भी बुद्धि हो गई है कि यहाँ रहूंगा तो पीटा जाऊंगा, इसलिए भाग गया है। जब कोई गलती हो जाए तो पहला उपाय है कि वहां से भाग जाना चाहिए। बचने का पहला उपाय है वास्तव में। इसके बाद धीरे धीरे प्रतिपक्षी का क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन अगर उसी धक्का में उसी समय अगर पकड़ में आ गए तब तो, और शायद कृष्ण उस समय पकड़ लिए गए होते तो तमाचा लग गया होता माँ का, जो भी हो, लेकिन वो भी समझे कि इसमें भाग जाना ठीक है। तो माँ बहुत प्रसन्न हुई, जहाज हंसने लगे कि देखो इसका आया तो मंथन दंड रोका, फिर गोद में चढ़ गया, पीने लगा, और थोड़ा सा मैंने तिरस्कार किया इसका, थोड़ा सा हटा दिया, इसी पर क्रोध में आ गया, इसको इतनी बुद्धि नहीं है कि इसी के लिए दूध बचाया गया और इस बारीकी से छेद कर दिया और भाग गया। लेकिन और भी चरण चिन्ह देख करके हंसने लगे कि ऐसे भागा है, इधर गया है। तो इस तरह जहाज माँ हंसने लगी और तत्र तम न अपश्यति, और कहीं नहीं देखी, देखने लगी इधर उधर कोना में कि कहीं छिपा हुआ है, खड़ा है दही मक्खन फोड़ करके। फिर बाद में उसने ध्यान दिया कि वो चरण चिन्ह उभरा हुआ है, उधर गया। चुपचाप माँ हो गई, बिल्कुल सन्न हो गई कि कहाँ है, कोई भीतर ही होगा। तब तक उधर से कृष्ण के चरण के नूपुर की आवाज आई, जो उल्टा उखल था उस पर वे चढ़े थे और छीके से माखन उतार करके बानरों को बांट रहे, तो हाथ का कंगन भी आवाज कर रहा था। अब भगवान को इतनी बुद्धि नहीं है कि ये आवाज माँ सुन लेगी, तो कंकन बोल रहा था, चरण के नूपुर बोल रहे थे, और कुछ बर्तन भी उतारने का सीके का कुछ आवाज उसमें से हो रही थी। तो माँ समझ ली कि एक दूसरे घर में जा करके माखन लुटा रहा है बानरों। पहले तो जाकर के खाए कृष्ण, एक उतारे और खाए और खाए तो स्वाद लगा। अथवा श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं पहले बानर को खिलाकर देखे, अगर वो खा लेगा खूब अच्छा से तो समझ में आ जाएगा कि बहुत स्वादिष्ट है। तो बानरों को देने लगे। तो माँ यशोदा सोची कि इसको धोखे से चुपके से पकड़ लो, और अब इसके मन में हो गया कि अब तो बच्चे की आदत बहुत बिगड़ती जा रही है, जितनी शिकायत गोपियों ने कहा है सही कहा है, अब तो आग के सामने सारी गलती हो रही है, आज मटका फोड़ रहा है, कर घर घर में आग लगा सकता है, सामान ले जाकर जमुना में फेंक सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आत्यष्टि, वो हाथ में छड़ी ले ली, मारने के लिए नहीं, केवल धमकाने के लिए छड़ी ली। वास्तव में सुखदेव गोस्वामी आगे भी कहते अर्भक वत्सला, कुछ भी था तो पुत्र के स्नेह में डूबी थी, इन स्नेह के कारण ही छड़ी हाथ में ले ली। अब तक कभी छड़ी कृष्ण को नहीं दिखाई थी। वास्तविक बात थी कि माँ यशोदा ने कभी तमाचा भी नहीं दिखाया था कृष्ण को अब तक, लेकिन हाथ में छड़ी ले ली, छड़ी से बच्चे ज्यादा डरते। पढ़ाने में तो पहले शिक्षक बच्चों को छड़ी से पिटा करते थे कभी कभी हल्का, अब तो लड़के सब स्वतंत्र हो गए, अब तो कोई शिक्षक उनको तमाचा भी नहीं मार सकता है। तो इसीलिए वो पढ़ने में भी गोबर गणेश हो रहे हैं, पढ़ते भी नहीं जो भी है। तो माँ यशोदा ने सोचा कि छड़ी दिखाऊंगी, डांटूंगी तो मेरा बच्चा सुसभ्य हो जाएगा, सुशील हो जाएगा। तो हाथ में ऐसे छड़ी दबाए दबाए और धीरे धीरे पग बढ़ाने लगी उधर जिधर कृष्ण थे। और कृष्ण क्या कर रहे थे, माखन कुछ खा रहे थे और बानरों को लुटा रहे थे। उलू खलांग्रे ऊपरी व्यवस्थित, माँ यशोदा ने देखा उखल के ऊपर व्यवस्थित है, भी अवस्थित खड़ा है, खड़ा होकर के मरकाय कामम दत्तम सिचि स्थितम हयंगवम, हयंगवम मतलब नवनीत, सिची में स्थित छींके पर रखे हुए माखन को लेकर के मरकाय दत्तम, मर्क को दे रहा है, बानर को दे रहा है। जातव एक वचन, एक वचन है, बानर को दे रहा था, बानरों को दे रहा था ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन जाति के लिए एक वचन शब्द का प्रयोग, मतलब बानरों को दे रहा था, छीट रहा था। कृष्ण के कहने का, इस लीला का भाव यह था उनके मन में कि मटका तो फोड़ा ही, घर में कुछ भी नहीं रहने दूंगा, जो भी है लुटाओ खिलाए, माखन इधर उधर फेंको, सब ये कर रहे। लेकिन भय भी बहुत था माँ का, चौर जो विषम की प्रेक्षण, चोर की तरह संकित दृष्टि से देख रहे थे इधर उधर, कहीं माँ तो नहीं आ रही है, तो आना तो था ही। अभी कृष्ण क्रोध में थे, भय में बिल्कुल नहीं थे, थोड़ा थोड़ा भय था कि माँ आएगी, तो चोर विषम की प्रेक्षण, चोर की तरह इधर उधर देख रहे थे कि आएगी क्या करेगी, और छीट भी रहे थे, देख रहे थे, इधर कर रहे थे, बानरों को दे रहे थे। तब तक उन्होंने देखा, निरीक्ष पश्चात सुतमागमच्छन, यशोदा और निकट आ रही थी, कृष्ण पहले नहीं देख पाए यशोदा को। तब तक श्री कृष्ण तामात यष्टिम प्रसमीक्ष सत्वर, ताम आत यष्टिम आता स्वीकृता यष्टि जया ताम यशोदाम दृष्टवा, यशोदा को देख करके प्रस इच्छ प्रकर्षेण सम्यक इच्छ, कृष्ण तो इस अनुमान में थे कि माँ आएगी पकड़ेगी मारेगी, तो पहले से ही बहुत सुंदर दृष्टि से वे देख रहे थे। सुखदेव गोस्वामी भगवान के दृष्टि का वर्णन कर रहे हैं, प्रसम इच्छ प्रकर्षेण सम्यक इच्छ, और ये भी देखे कि छड़ी लेकर आ रही है, अब तो छड़ी लेकर आ रही है, तो पहले भी वे देखे थे ब्रज में अन्य बच्चों को, उनकी माताएं छड़ी से कभी पीटती होंगी, एक आध छड़ी चाहे दिखाती होंगी, देखे बस ततः अवरूह्य, उस उखल से अवरूह्य अपससार, कूद करके और अपलाय तो भाग चले, अपससार बहुत दूर भाग चले, अब अपने घर से बाहर हो गए, दूसरे के घर में चले गए, फिर गली में चले गए, गली से फिर इधर उधर पूरे गोकुल में भागने लगे। अच्छा, माँ यशोदा का क्या हुआ, वो भी हाथ में छड़ी लिए थी, वो ये नहीं जानती थी कि हमारा बच्चा इतना तेज भाग भी सकता है। और एक सयाना व्यक्ति छोटे से बच्चे का अनुगमन करे तो दो पग में ही पकड़ लेगा दौड़ करके। माँ यशोदा उनके पीछे चली तो वे चले भाग कूद करके, भागते रहे भागते रहे भागते रहे, और माँ यशोदा को आश्चर्य हो रहा था कि इतना तेज भाग सकता है। तो भीतवत, अभी वो भयभीत थे जैसे थे, भयभीत वास्तव में नहीं थे। जैसा मैं शुरू में कहा कि बच्चे कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि माँ मारेगी नहीं मारेगी नहीं, लेकिन फिर भी भागते हैं, फिर भी भागते हैं, सोचते हैं मारेगी नहीं, भागते हैं। तो भगवान भी भागे, बहुत भयभीत नहीं थे, भयभीत का नाटक कर रहे थे शुरू में। जब हाथ पकड़ेगी तब पूरा भय हो जाएगा इनको, कब तो बिना मारे नहीं छोड़ेगी और बिना बांध। तो भाग रहे थे, माँ यशोदा भी दौड़ रही थी, गांव में सब लोग तमाशा देखने लगे, क्या हो गया क्या हो गया, क्या किया है माता जी यशोदा रानी जी, क्या हो गया है क्या हो गया। और माँ तो पसीने से लथपथ हो रही थी, भारी शरीर था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गोप्यन न धावन न जमाप योगिना मन प्रवेशुम तपसे रितम मन क्षम प्रवेशुम तपसे रितम मन। जिन भगवान को योगियों का समर्थ मन भी नहीं पकड़ पाता है, तपस्या द्वारा ईरितम प्रेरितम, तपस्या द्वारा शुद्ध किया हुआ मन भी भगवान के रूप को नहीं पकड़ पाता है, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए गोपी पीछे पीछे दौड़ रही। बड़ा सुंदर उदाहरण दिए, योगियों का शुद्ध मन स्पिरिचुअल मैटर को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, और उसमें जो बहुत बड़े योगी होते हैं, जैसे योगिनाम अपि सर्वेषां, सबसे श्रेष्ठ योगी होते हैं, उनका तपस्या और भक्ति के अनुशीलन से मन बिल्कुल शुद्ध होता है, तभी भगवान के रूप गुण को पकड़ लेते हैं, तुरंत समझ में आ जाती है बात। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सामान्य योगियों का तपस्या के द्वारा किया हुआ शुद्ध मन भी भगवान को नहीं पकड़ पाता है, उन्हीं भगवान को गोपी पीछा कर रही है पकड़ने का, डायरेक्ट शरीर से, मन की बात नहीं है, शरीर से पकड़ना चाहते और पकड़ ली। और काल और यम से भी जो भयभीत नहीं होते हैं, बल्कि काल और जमराज आदि जिनसे भयभीत होते हैं, ऐसे भगवान रोने लगे माँ यशोदा के पकड़ने पर। उसको एक शब्द हमारे यहाँ देते हैं, घिघिया करके रोना, बच्चे घिघिया कर रोने लगते, जब ही माँ ने हाथ पकड़ा तो आय आय आओ बहुत जोर से रोने लगे। हरिश्वरी जी कहते हैं कि भगवान ने मानो ये समझा कि अबला होकर के अपना बल प्रकट कर रही है, तो मैं भी अबल हूँ, बच्चा हूँ, तो मुझे अपना बल प्रकट करना चाहिए। तो रुद्रतम ही बलम से सुना, बच्चों का बल है रोना, भगवान ने अपना बल लगाया रोने का कि इधर से ये बल लगा रहे तो मैं भी बल लगाऊंगा। वास्तव में बच्चे रो देते हैं तो सारा काम करना पड़ता है उनके लिए, तो रोना ही उनका बल है, स्त्री का और बच्चा का रोना ही बल माना गया, वे रो करके बहुत काम करा लेते हैं, लड़ करके नहीं करा सकते लेकिन रो करके बहुत काम करा लेते। भगवान रोने लगे, काल और जमराज भी भयभीत होते हैं भगवान से, वे माँ से भयभीत हो रहे हैं, और ब्रह्मा शिव आदि जिनकी स्तुति करते हैं, जिनका गुण गाते हैं, उनको माँ यशोदा डांट रही है, बहुत तरह से डांट रही, भर्त्सना कर रही है, बानर बंध मंथनी स्फोटक अरे दुर्वृत्त उच्छृंखल, आज से अब तुमको कभी माखन नहीं मिलेगा, कभी नहीं दूंगी, माखन निकाल रही थी तुम्हारे लिए, तो आज से अब तुमको कभी माखन नहीं दूंगी और कभी तुम्हारे साथियों के साथ खेलने नहीं दूंगी, अब हो गया तुम्हारा स्वतंत्र व्यवहार सब कुछ। माँ क्रोध में नहीं थी, माँ तो हितैषिणी, सुखदेव गोस्वामी कहते हो तो हित की भावना में पड़ी हुई थी, बच्चे का कल्याण होना चाहिए, लेकिन भगवान पूरा पूरा भय में हो गए थे, पूर्णतः भगवान डर गए थे। कुंती महारानी इसकी साक्षी हैं कि गोप्या ददे तो कृता गसीदा मतावत, कुंती जी उस दिन गई थी ब्रज में और इस लीला को आंख से देखा था, और कहते हैं कि जब गोपी ने रस्सी उठाया आपको बांधने के लिए, आपकी जो दशा थी वास्तव में वो अभिनय नहीं था, आप वास्तव में डरे हुए थे। तो मुझे उस लीला की याद आती है। और फिर महाभारत जैसे युद्ध में आप हमारे पुत्रों को विजय दिए और सब किए, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का निवारण किए, आपका इधर ऐश्वर्य देखती हूँ और उधर आपकी वो दशा, तो मैं भ्रम में पड़ जाती हूँ कि कौन सत्य है। वो कह रही है, सुखदेव गोस्वामी भी कह रहे हैं कि भगवान पूरा डर चुके, पूरा भयभीत हो गए हाथ पकड़ने को। तो माँ पकड़ने के लिए दौड़ी थी तो उसके केशबंध के पुष्प गिर रहे थे, पसीना छूट रहा था, बृहत छोड़ी चलत वो थक गई थी, बार बार कृष्ण के साथ वो भाग रही थी पीछे पकड़ने के लिए, तो थक चुकी थी, इसका वर्णन कर रहे हैं। लेकिन भगवान यही मान रहे थे कि मेरी माँ है, पर माँ भी तो मारेगी ना, हित करने के लिए मारेगी। वो आवश्यक हो गया था। अब तक तो उनको ऐसा हुआ कि थोड़ा भागूंगा और इसके बाद वो पकड़ लेगी तो ज्यादा क्रोध नहीं करेगी, लेकिन अब भगवान को भी विश्वास हो गया कि बहुत हैरान किया, इसलिए जल्दी पकड़ में नहीं आ रहे थे। लेकिन अंत में परामृशक चपट करके गोपी ने पकड़ लिया, जशोदा ने पकड़ लिया। जो ही पकड़ा त्यों ही इनके दोनों आंखों से अजस्त्र आंसू चुने लगे, मुझे मारो मत, मुझे मारो मत, और इस तरह अपनी तोतली बोली में बोलने लगे। बोली नहीं निकल रही थी, सांसें लंबी लंबी निकल रही थी, आंखों से आंसू। दाहिना हाथ पकड़ लिया माने, बाएं हाथ से मलने लगे अपने हथेली के पृष्ठ से, पीछे से ऐसे मलने लगे। तो आंसू इतने गिर रहे थे कि वे काजल को धो रहे थे, और कृष्ण दोनों आंखों को बारी बारी से मल रहे थे और माँ पर देख रहे थे, उद्विक्ष मार रहे, देखने पर दया आ जाएगी। लेकिन वो तो अब दया उत्पन्न होने वाली नहीं थी, अब हित करना चाहते थे। दया करके तो बहुत दिन देख ली कि इस तरह से लड़का बिगड़ गया, दया नहीं कर रहे थे, अब स्नेह कर रहे थे दूसरे तरह से। खूब रो रहे थे, भगवान पकड़ ली है। लेकिन जब माँ जसोदा ये जान गई कि पूरा डर गया है बच्चा, पूरा डर गया है कि मारेगी ये करेगी, तो उसने छड़ी रख दिया, छड़ी रख करके और तब कहीं अब बांधने का उपक्रम करने लगी, अब बांधूंगी। तो फिर भी भगवान तो, भगवान पर तो विपत्ति तो उतनी ही रह गई। अरे मारो बांधो सब, तो बांधने का काम जारी रहा माँ का। तो किस तरह माँ ने बंधन किया कृष्ण को, इसको हम दूसरे सिटिंग में कहेंगे, जो बहुत प्रसिद्ध लीला है। भगवान का वह रुदन, लंबी लंबी सांस लेना, माँ के तरफ कातर दृष्टि से देखना, एक भगवान के लीलाओं में अद्भुत यह लीला है जो भक्तों के हृदय में घर कर जाती है। और वास्तव में यही सब लीलाएं हैं जिससे लोग कृष्ण का भजन कर सकते हैं, भगवान के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं। जब भगवान अपनी भक्त वश्यता दिखाते हैं, अपनी लीला माधुरी दिखाते हैं, तो वही चित्त को आकृष्ट करते हैं। तो इस प्रकार माँ जसोदा कृष्ण को पकड़ चुकी है, वत्स रो रहे हैं, तो इसलिए उसने छड़ी रख दिया है, लेकिन अब बांधना चालू करेगी। माँ ने यह भी सोचा कि बहुत डर गया है तो कहीं दुखी होकर के वन में न भाग जाए, सो तो महाबन चारों ओर वन ही वन था, तो शायद रुष्ट होकर के मान करके वन में भाग जाएगा, इसीलिए उसने सोचा कि बांध करके रखो। अब सजा देने के लिए नहीं बांधना चाहती थी, थोड़ा बांध करके रखू इसको। लेकिन कृष्ण ये समझे कि अब तो हमारी स्वतंत्रता समाप्त होने जा रही, अब तो बांध करके रख, पशु जैसे बांध करके रखे जाते हैं वैसे रखे। तो वे और रोने लगे, और श्री बलराम जी आए, बांधते समय तो नहीं आए लेकिन बाद में आएंगे, फिर और गोपियां आएंगी, क्या क्या बांधने में भी बहुत देर हुई, जल्दी नहीं बांध रहे थे। तो उस लीला को हम लोग बाद में सुनेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्लोक 10-11 कृपागसंतं प्ररुदन्तमक्षिणे कसन्तमज्जन्मशिणी स्वपाणिना समञ्जन् उद्वीक्षमाणं भयविह्वलक्षणम् हस्ते गृहीत्वाभिशयन्त वागुरात् त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतम् विज्ञायार्भकवत्सला येष किल तं बद्धो दाम्ना तद्वीर्जकोविदा। जब माँ यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया झपट कर, तो कृष्ण उस समय बहुत जोर से रोने लगे। सुखदेव गोस्वामी उसके लिए शब्द दे रहे हैं प्रारुदंतम। माँ यशोदा क्यों कृष्ण को पकड़ी? जब कृष्ण इतना भाग रहे थे तो छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो पकड़ी इसलिए कि कृतागसम, आगह का अर्थ होता है अपराध, कृता का अर्थ किए अपराध किया था बच्चे ने। क्या अपराध किया था? दही का मटका फोड़ दिया था। और दूसरा अपराध किया था, घर के सामान को, धन को बानरों को बांट रहा था। तीसरा, माँ को इतना हैरान किया गली में भाग भाग करके, ये सब अपराध किया। तो बच्चे के अपराध का निराकरण होना चाहिए, निवारण होना चाहिए, यह एक अच्छा बच्चा बने, इस उद्देश्य से माँ ने सोचा कि इसको पकड़ना ही है, धमकी देनी है। तो कृतागसम तम, और श्री कृष्ण को भी ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैंने अपराध किया है। और जब माँ इतना हठ में पड़ गई, निर्बंध में पड़ गई, जब मेरे पीछे दौड़ कर पकड़ लिया, तो निश्चित ही अब मारेगी भी। पहले उनको विश्वास नहीं था कि मारेगी, तब उन्होंने सोचा था कि थोड़ा भागूंगा तो फिर हंस करके छोड़ देगी, अच्छा अच्छा बाद में बताऊंगी। लेकिन वो निर्बंध पूर्वक कृष्ण को पकड़ ली। पकड़ते ही कृष्ण प्ररुदंतम, प्रकर्षेण रुदंतम, जोर जोर से रोने लगे। और उनकी दशा क्या थी? अक्षिणी अंजन मशिणी। अंजन का अर्थ होता है विस्तृत होना, मशिणी का अर्थ स्याही काजल, आंखों का काजल प्रसृत होने लगा, फैलने लगा। क्यों? कसंतम स्वपाणिना। स्वपाणिना शब्द का यह अर्थ है कि वही कृष्ण जो कभी भी रोते थे तो माँ अपने हाथ से आंसू पोछती थी उनका, लेकिन आज माँ मारने के लिए तैयार है तो अब अपने ही हाथ से आंसू पोछ रहे। अब इतना लाचार हो गए, बेचारा हो गए हैं आज भगवान। कभी भी कृष्ण रोते थे तो माँ तुरंत गोद में उठा करके और आंसू पोछती थी आंचल से, हाथ से, लेकिन अब वही माँ शत्रु बन गई, वही मारने के लिए तैयार है तो अब अपना ही हाथ सहारा दे रहा है भगवान का, उसी से पोछने लगे। स्वपाणिना, पाणिना कह देने से भी काम चल सकता था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कुछ और सोच कर बोल रहे हैं, स्वपाणिना अपने हाथ से। अब तक अपने हाथ से आंसू कभी नहीं पोछे थे। रोते थे कई बार और आंसू मार्जन माँ यशोदा करती थी, पर आज अपने हाथ से कर रहा। और इस कारण से कसंतम अक्षिणी, दोनों आंखों को मल रहे थे, कभी इसको मलते थे कभी इसको मलते थे, और भय से ऊपर ऐसे किए थे। माँ जो सदा बड़ा शरीर वाली थी, कृष्ण छोटे थे, तो माँ के नेत्रों पर देख रहे थे कि अभी मेरी दुर्दशा को देख करके माँ को दया आ जाए, और बिल्कुल भयभीत हो गए थे। महारानी कुंती उस समय वहां पर गई थी जब कृष्ण थे, उन्होंने देखा था इस दृश्य को आंख से। अंजन का अर्थ प्रसरण, फैल रहा, सिलाई फैल रहे, जैसे जैसे आंसू निकल रहे थे, अरे मल रहे थे, तो आंसू से भीग करके काजल गाल पर इधर उधर आने लगे थे। उद्विच्छमाणम, उद का अर्थ है ऊपर, वी का अर्थ है विशेषण, इच्छमाणम विक्षमाणम, ऊपर देख रहे थे विशेष रूप से। मनुष्य अथवा किसी भी जीव के मन में यह भावना होती है कि मैं किसी से दया उत्पन्न कराऊं, तो अपने आंखों में वह करुणा छा करके देखता है, करुण दृष्टि से देखता है कि दया आ जाए। तो भगवान आज इतने असहाय हो गए हैं कि माँ के तरफ कातर दृष्टि से देख रहे हैं, भय भी वाले क्षण और आंखें बिल्कुल नाच रही थी, भय से कातर हो रही थी, और हस्ते गृहीत हुआ, माँ एक हाथ पकड़ चुकी थी, इतना जोर से पकड़ी थी कि अब न भाग जाए। तो कृष्ण को शायद अभी भी चांस मिलता तो रोना धोना छोड़कर भाग गए होते, लेकिन भाग करके एक प्रकार से भगवान थक चुके थे, उनकी सारी शक्तियां पस्त हो चुकी थी। भगवान में अनंत शक्ति है, वे तो योगियों के मन से भी दूर भाग सकते हैं, एक गोपी क्या पकड़ेगी, लेकिन प्रेम की डोरी से दूर भाग नहीं सकते, पकड़ लिए गए थे, अपनी पूरी शक्ति लगाकर भगवान भागे, लेकिन मां यशोदा से भाग नहीं सकते, हाथ पकड़ लिया, दाहिने हाथ में छड़ी ली है और बाएं हाथ से कृष्ण के दाहिने हाथ को पकड़ चुकी है, डांट रही है। भीषयंती, भीषयंती का अर्थ भय उत्पन्न कर रहे, विभीषिका दे रहे, वास्तव में मारने की इच्छा नहीं थी, मारने का विचार नहीं था, लेकिन इतनी धमकी देनी थी कि आज से कभी भी इस प्रकार की शैतानी न करने पाए, इसलिए अवागुरत का अर्थ है मारने का उद्यम कर रहे थे, केवल उद्यम का अर्थ छड़ी को ऊपर उठाना, हाथ पकड़ के, उतना रो रहे थे, कातर थे, छोटा बच्चा, लेकिन फिर भी ऐसे मारने को कर रहे थे, कृष्ण कर रहे थे, जैसे तांत्रिक वैसे और रोने लगे, अवागुरत, बार बार छड़ी उठा रहे थे, फिर मटका फोड़ोगे, अब आज से मैं तुम्हें कभी भी नवनीत खाने को नहीं दूंगी और कभी तुम्हारे साथी बच्चों के साथ खेलने नहीं दूंगी, तुम इस तरह से नटखट हो गए हो, इस तरह से चापल लेकर रहे, फिर करोगे, वो कहते ना ना, ऐसे करते ही रो रहे थे बहुत जोर से, बोली तो कम निकल रही थी लेकिन आंसू बहुत निकल रहे थे और लंबी लंबी सांस फफक फफक कर रो रहे थे। तो माँ यशोदा ने देखा कि वो बिल्कुल डर गया, तो माँ को शंका हो गई बच्चा अत्यधिक शोक में होगा, कहीं इसके कोई शरीर में गड़बड़ी ना हो जाए, ऐसा होता है ना, एकाएक बहुत शोक में बच्चा हो जाए तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। उसने तुरंत छड़ी फेंक दिया, दिखा करके छड़ी फेंक दी, लेकिन हाथ पकड़े रही। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं त्यक्तवा जस्टि, देखते ही उसने छड़ी छोड़ा, इसलिए त्यक्तवा शब्द पहले कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, त्यक्तवा जस्टि, छड़ी छोड़ दिया, त्याग दिया, क्यों, सुतम भीतम विज्ञाय, अपने पुत्र को भीतम विज्ञाय, भीत देखकर बहुत अधिक डर गया है, और वास्तव में वह मारने वाली नहीं थी, क्योंकि वार्भक वत्सला, यशोदा का यही भाव था कि यह मेरा अनजान अज्ञानी बच्चा है, गलती कर सकता है, मैं माँ हूँ, मेरा प्रिय है, तो इस कारण से मैं मारना नहीं चाहती थी, तो बच्चे के स्वास्थ्य के कोई हानि न हो, अधिक देर ना रोए, इसलिए छड़ी फेंक दी, लेकिन छड़ी फेंक दी तो श्री कृष्ण को कुछ धीरज हुआ, कुछ रोना कम हुआ, लेकिन जब वो रस्सी उठाने लगी बांधने के लिए तब तो फिर से रोना चालू। मारना और बांधना यही तो दंड है इस दुनिया में। तो भगवान को मारा तो नहीं जा रहा है लेकिन अब बंधन किया जाएगा इनको, और बंधन एक जड़ पत्थर से किया जाएगा कि पड़े रहो बंधन में, न खेलना न खाना न बात करना, गोद में आने की बात तो दूर रहे, गोद से उतार दी तो तुम इतना उद्यम किए, अब जाओ गोद में, खल की गोद में जाओ, उखल की गोद में जाओ। ये सच्छत केल तम बद्धुम, उनको बांधने की इच्छा की। सबसे पहले माँ यशोदा अपने केशबंध के पास को, जो लगभग एक दो मीटर रहा होगा, रेशमी डोरी जिसे वो बांधती थी केशबंध, अपने केशों को सवार कर माँ यशोदा उसको बांधती थी, वो तो खुल चुके थे भागने नहीं, तो इसीलिए वो रस्सी लटक रही थी माँ के देह पर, सामने ही ध्यान आया और रस्सी ली और उसका एक सिरा उखल से बांधा रस्सी का, और दूसरा सिरा अब इनके कमर में। आज भी देखा गया है कि अपराधियों को कमर में ही बांधते हैं रस्सी, और या हाथ हाथ में, तो कमर में रस्सी लपेटने के लिए सोचने लगी। जब उसने लपेटा कमर में, जब फांस देना चाहा तो आते आते वो रस्सी दो अंगुल कम पड़ गई, बांधते समय गांठ लगाते समय। लेकिन सुखदेव गोस्वामी पहले बंधन का वर्णन कर देते हैं। त्यक्त्वा जष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार भकवत्सला ये सकिल तम बद्धुम दामना तद्विर्ज को विदा। महाराज परीक्षित मानो एक प्रश्न करते हैं कि भगवान ने विराट रूप दिखाया दूध पिलाते समय, दो बार दिखाया, तृणवर्त का वध किया, सप्तासुर का वध किया, तो इसको क्या ज्ञान नहीं होता था कि ये परमेश्वर है? भगवान के वीर्य का पराक्रम का ज्ञान यशोदा को नहीं होता था, क्यों बांधने का प्रयास करने लगी? तो सुखदेव गोस्वामी कहते अतद वीर्य को विदा, अ का अर्थ नहीं और तद वीर्ज को विदा, कृष्ण के पराक्रम का कोविद नहीं थे। इतना घनीभूत स्नेह था कि उस स्नेह की बाढ़ में भगवान के ऐश्वर्य की उसे कोई याद नहीं रहती थी। इतना प्रेम है माँ यशोदा के हृदय में भगवान के प्रति, वह प्रेम भगवान के ऐश्वर्य को पराक्रम को दूरीभूत कर देता था। कभी उसको स्मरण भी नहीं आया कि इसके मुख में ब्रह्मांड देखा, ये देखा, वो देखा, तो उसको भी दुःस्वप्न जैसा मान रही थी, पता नहीं क्या इसके मुख में देख रही हूँ, कोई भूत है, प्रेत है, क्या है, तांत्रिक कोई कुछ कर दिया, तो वो ऐसा सोचती थी। अंततः वो कृष्ण को भगवान नहीं मानती थी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते अतद वीर्य को विदा, कृष्ण के ऐश्वर्य को, भगवत्ता को नहीं जानती थी, इसीलिए उनको बांधने का प्रयास करने लगी और बांध दी। न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम न पिचापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंग मधोक्षजम गोपिकोलुखले दामना बबंध प्राकृतम जथा। श्रील सुखदेव गोस्वामी को खुशी हो रही है कि कृष्ण बांधे जा रहे हैं, इसीलिए कहते हैं माँ ने बांध दिया। किसको बांधा? अव्यक्त ब्रह्म को बांधा, अव्यक्त को बांधा, अधोक्षज को बांधा, अज को बांधा। किसने बांधा? गोपिका ने। कहाँ बांधा? उलूखल है, गोपिका ने उखल में रस्सी से बांध दिया। यह नहीं कह रहे कि अपने पुत्र को बांधा, ये नहीं कह रहे हैं। वो मानती थी मत्वा आत्मजं, अपना पुत्र मान करके बांध दी। पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं किसको बांधी? अजम अव्यक्तम अधोक्षजम मर्त्यलिंग, ये विशेषण दे रहे हैं। वास्तव में बंधन किस पर लगा है? भगवान पर, अव्यक्त ब्रह्म पर। अव्यक्त का अर्थ निराकार नहीं होता है, अव्यक्त का अर्थ होता है जिनकी प्राकृत कोई अभिव्यक्ति नहीं है, सब कुछ अप्राकृत है। अधोक्षज का भी वही अर्थ है, जिनको प्राकृत इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता है, उनको यशोदा ने एक साधारण रस्सी से बांध दिया। बबंध गोपिका उलू खले बबंध, उखल में बांध दिया, बांध दी। न चांतर न बहिर्जस न पूर्वम न पिचापरम, जिनमें न भीतर है न बाहर है, न प्रारंभ है न अंत है, बल्कि अंत और शुरुआत भीतर और बाहर इस जगत के जो हैं, जगत के रूप में भी जो हैं, उनको गोपी ने अपना पुत्र समझकर बांध दिया। किसको बांधा गया? न चांतर जस, जिनके जिनका कोई भीतर नहीं है और बही नहीं, भगवान के बाहर कुछ नहीं। इसलिए कि आप कौन ऐसे स्थान की कल्पना करेंगे जहाँ जहाँ भगवान नहीं है, जहाँ भगवान का वह विभू शरीर व्यापक नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं। इसलिए भगवान में बस बाहर कुछ है ही नहीं, बंधन बाहर लगेगा, बाहर कुछ है ही नहीं उनके अलावा। रस्सी तो उन इस जड़ जगत में एक छोटा सा टुकड़ा है, वो क्या भगवान को लपेट पाएगा? रज्जू में बांधने की शक्ति नहीं।